समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे। सुप्रभात, कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी को फरहत नाज का नमस्कार। देशभर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हर वर्ष ये दिन हिंदी को समर्पित होता है और प्रतिभा गर्ग कहती हैं कि संस्कृत से जन्मी है हिंदी, शुद्धता का प्रतीक है हिंदी, लेखन और वाणी दोनों को गौरवान्वित करवाती हिंदी, हमारे देश की गौरव भाषा, एक उत्कृष्ट एहसास है हिंदी।
हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा।
और श्रोताओं, हिंदी भाषा की बात की जाए या फिर हिंदी साहित्य की बात की जाए तो मुंशी प्रेमचंद हो या रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन का नाम हो या फिर यशपाल, महादेवी वर्मा हो या भीष्म साहनी या फिर अज्ञे या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन सब के बिना हमारा हिंदी साहित्य अधूरा है।
Well, as Farhat said, Hindi Divas is being celebrated across the country today, and listeners, it was on this day in the year 1949 that the Constituent Assembly adopted Hindi, written in Devanagari script, as the official language of the country. Today, Hindi is one of the widely spoken languages in the world and the first language of more than 520 million people. That's a lot.
जी बिल्कुल, तो आइए हिंदी भाषा को सम्मान देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से शगुन चोपड़ा और फरहत नाज का आप सभी को नमस्कार।
एंड ऑन दैट नोट, वंस अगेन अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क टू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। एंड इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर वी विल ब्रिंग यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज। ऑल्सो वी विल बी प्रोवाइडिंग यू मेट्रो सिटी अपडेट्स and some of the historical information related to today, that is 14th of September. So let's begin with the headlines first.
जी शगुन, सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। सरकार ने बासमती चावल के निर्यात के लिए पंजीकरण सह आवंटन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए $950 प्रति टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटा दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फैसले की सराहना करते हुए कहा कि उच्च गुणवत्ता वाले चावल के निर्यात से किसानों की कमाई बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इससे निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। श्री गोयल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से लिया गया यह फैसला किसानों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।
कैंपेनिंग इज इन फुल स्विंग फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ असेंबली इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर। 24 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज विल गो टू पोल्स इन दिस फेज ऑन 18th ऑफ दिस मंथ। टॉप लीडर्स ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज आर लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड टू वू द वोटर्स। Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi will address an election rally in Dodra district today. The Congress and National Conference are also campaigning for their party candidates. Polling in the Union Territory is being held in three phases. Voting for the second phase will take place on the 25th of this month and the third phase on 1st of October. Meanwhile, after the scrutiny of nomination papers for the final phase of assembly polls yesterday, candidature of 449 contestants was found valid. The last date for withdrawal of candidature is the 17th of September. Election campaign is also gaining momentum for single phase assembly polls in Haryana. Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi will launch party's campaign in the state today. Mr. Modi will hold election rally at theme park of Kurukshetra this afternoon. It will be the first election rally of the Prime Minister in Haryana. Voting for the 90-member state assembly will be held on the 5th of October. Counting of votes for assembly polls in Haryana and Jammu and Kashmir will take place on the 8th of next month. Prime Minister Narendra Modi will transfer the first installment of the Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen to the beneficiaries of in Jharkhand at a function in Jamshedpur tomorrow. Briefing media in New Delhi yesterday, Union Minister for Rural Development Shivraj Singh Chauhan said the Prime Minister will distribute sanction letters to around 20,000 beneficiaries in the state. Apart from this, more than 5 crore rupees will be transferred directly to the bank accounts of the beneficiaries through a single click. He added that the house warming ceremony for the newly constructed houses of 46,000 beneficiaries will also be held. The union minister informed that the prime minister will also transfer the installment to the beneficiaries in Gujarat on Monday and to the beneficiaries in all other states including Odisha on Tuesday where the model code of conduct is not applicable.
वहीं चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे. राजभाषा विभाग हिंदी के राजभाषा बनने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सम्मेलन का आयोजन कर रहा है. आज हिंदी दिवस के अवसर पर श्री शाह राजभाषा भारती पत्रिका के हीरक जयंती विशेषांक का विमोचन भी करेंगे और राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे. संवाददाताओं को संबोधित करते हुए राजभाषा विभाग के सचिव अंशुलि आर्य ने बताया कि इस हीरक जयंती को यादगार बनाने के लिए स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया जाएगा. वहीं रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए बनाए गए हल्के युद्धक टैंक जोरावर का सफल फील्ड परीक्षण किया. ये टैंक बहुत ऊंचाई वाले इलाकों और रेगिस्तानों में भी आसानी से चल सकता है. जोरावर लड़ाकू टैंक को डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक विकसित किया है. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों सहित कई भारतीय उद्योगों ने इसके विकास में योगदान दिया है.
Prime Minister Narendra Modi will flag off 6 Vande Bharat Express trains at Jamshedpur in Jharkhand tomorrow. These express trains, each linked to the state, will be inaugurated at a grand ceremony at Tata Nagar Railway Station. In addition to inauguration of these trains, the event will see the unveiling of several key railway projects in Jharkhand, emphasizing the government's commitment to improving regional infrastructure.
स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 देशभर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा. इस वर्ष का विषय है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता. इस मिशन की 10वीं वर्षगांठ पर यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण उपलब्धि है. उद्घाटन समारोह में केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि सरकार इस वर्ष के स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 2 लाख स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों सीटीयू को बदल देगी. उन्होंने कहा कि स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए इन सीटीयू स्थलों को जिला स्तर पर गैर सरकारी संगठनों और विभिन्न संस्थानों द्वारा अपनाया जाएगा. कार्यक्रम के दौरान श्री मनोहर लाल ने यह भी कहा कि सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक ही जगह सेवाएं प्रदान करने के लिए सफाई मित्र सुरक्षा शिविर भी आयोजित किए जाएंगे.
The National Investigation Agency, NIA, has conducted searches at several locations in Punjab in connection with its probe into the attack on the Indian High Commission in Canada allegedly by pro-Khalistan supporters. The searches were conducted yesterday in Moga, Amritsar, Gurdaspur and Jalandhar. The target locations were connected with the accused Khalistani leader Amarjot Singh and his associates. Last year, the agency had registered a case over a protest by pro-Khalistani supporters outside the Indian mission in Ottawa. As per investigations, Amarjot had led the protesters who raised anti-India slogan, tied a Khalistani flag on the boundary wall of the High Commission and hurled 2 grenades inside the building in March 2023. In Assam, the state cabinet has decided to hand over all the cases registered in connection with the unregulated deposits and illegal trading scams to the CBI for investigation. The cabinet has also directed the Home and Finance departments to jointly prepare a standard operating procedure to prevent occurrence of such activities in the future. Recently, several FIRs were lodged in connection with illegal online trading scam and people held protests at various places across the state on the issue. Till now, 61 people have been arrested, 22 lookout circulars have been issued and 14 special investigation teams have been formed in connection with the scam. Our correspondent reports 3 major fraudulent online investment firms alone cheated people to the tune of more than 11,000 crore rupees.
डीडी नेशनल अपनी 65वीं वर्षगांठ के अवसर पर दूरदर्शन पर विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा. 15 सितंबर 1959 को इस चैनल की स्थापना हुई थी. इसके बाद से राष्ट्र की आवाज के रूप में वे एकता संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देने वाले अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत करता रहा है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इस महत्वपूर्ण वर्षगांठ को मनाने के लिए डीडी नेशनल एक विशेष कार्यक्रम दिल से दूरदर्शन DD@65 प्रसारित करेगा. ये कार्यक्रम कल सवेरे 10 बजे प्रसारित किया जाएगा. वहीं नौवा लद्दाख जांस्कर महोत्सव 2024 सानी गांव में शुरू हो गया है. केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉ बीडी मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया. जांस्कर को सरकारी तौर पर जिला घोषित किए जाने के बाद पहली बार इस महोत्सव का आयोजन किया गया. इस 2 दिवसीय महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्र की विभिन्न परम्पराओं को दर्शाया जा रहा है. इसमें करगिल के पुर्गी जनजातियों, द्रास का शिना समुदाय, आर्यन घाटी के दर्द आर्यन समुदाय और चाकथांग के चंगपा घमंतु समुदाय के लोग अपने परम्परागत कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे.
Let's now talk about the sports world happening. In hockey, defending champions India will take on arch rivals Pakistan in their fifth and final pool match of the Men's Asian Champions Trophy tournament at Hulunbuir in China today. The match is scheduled to start at 1:15 p.m. Indian Standard Time. Four-time champions India have already qualified for the semi-finals after their fourth straight win in the league phase against South Korea. The Harmanpreet Singh-led team, which has remained unbeaten in the tournament so far, currently tops the points table with 12 points and, irrespective of the result against Pakistan, will finish first in the round-robin stage.
वहीं शगुन मौसम विभाग ने आज भी देशभर के कई राज्यों में बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उड़ीसा और झारखंड में मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं उत्तराखंड में भी अत्यधिक वर्षा की संभावना है। इस बीच आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश होगी। विभाग ने अगले 3-4 दिनों तक छत्तीसगढ़, अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और बिहार के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भी आज वर्षा की संभावना है। और अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और रुक कर लेते हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से जुड़ी खबरों का।
फर्स्ट लेट्स फोकस ऑन चेन्नई। अ टू-डे कॉन्फ्रेंस फॉर द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड वॉज कंडक्टेड एट चेन्नई। Commander Coast Guard Region East Inspector Donnie Michael reviewed the operational preparedness and administrative functioning of the Coast Guard units in the eastern region with emphasis on coastal security, infrastructure development, training, administrative and welfare matters. During his opening address, he sensitized the district commanders on the prevailing security scenario. The conference also included sessions on preparedness and response mechanisms against recent security challenges such as cyber security, trans-border illegal trade, smuggling and illegal poaching. With over 50 ships and vessels and over 10 aircraft under command, Coast Guard Region East is one of the biggest regions covering three states of Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Puducherry with a combined coastline of 1,930 kilometers. Staying with Chennai, a three-part surgery was performed on a premature baby with Amiens hernia, a rare condition where the appendix is located in the groin. The baby, born in 28 weeks and operated on the 23rd after his birth, was the fourth case in the world. A team of doctors from the SRM Global Hospitals performed the surgery, which involved a lot of procedures, which lasted an hour. Doctors said the surgery was challenging as the boy, like any other premature baby, had an immature airway that made anesthesia difficult. The low birth weight of the infant necessitated specialized post-operative care in the NICU to ensure proper recovery. Now let's focus on Bengaluru. Karnataka Medical Education Minister Dr. Sharan Prakash Patil has assured to strengthen security at medical colleges, hospitals and student hostels in the state. He was speaking after a high-level meeting chaired by him with the department officers. The minister informed that opinions of women health professionals and other stakeholders will be collated to review the security arrangements to be extended for securing the safety of medical students and staff. AI-enabled systems will be utilized to ensure safety measures. Dr. Patil issued directions to form standard operating procedures and protocols for the security staff securing these establishments. He also gave directions to open round-the-clock canteens with the premises so that the female students and staff have no need to step out at night. The institutions will provide color-coded ID badge, SOS remote and hooter along with individual security alarms. He also said that CCTV should be functional and the control room with a helpline should operate round-the-clock. Now let's turn our attention to Hyderabad. The Telangana government has announced transgender-specific government recruitment and social welfare program under which transgender persons will be trained and recruited for traffic management. The government claimed that this is India's first ever transgender-specific government recruitment program. As the program announced by Chief Minister A. Revanth Reddy, once transgender individuals are identified and recruited, they will undergo specialized training to assist the Hyderabad Traffic Police. The introduction of transgender traffic support troops aims to ensure smoother road management while empowering an underrepresented community with stable government employment. The government is also working on creating distinct uniforms for transgender recruits with separate designs for these individuals. After training, the transgender troops will be deployed in Hyderabad. The chief minister at a meeting informed that the initiative aimed at addressing two key societal issues, employment for the marginalized transgender community and the city's traffic management challenges. So these were the updates from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Now Farhat will be sharing the updates from Delhi, Mumbai and Kolkata.
जी शगुन, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर से। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कल शाम तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। सर्वोच्च न्यायालय ने कल उन्हें दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत दे दी। वहीं भारतीय रेलवे गांधी जयंती के अवसर पर आज से 1 अक्टूबर तक स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता के विषय पर स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन कर रहा है। रेलवे महात्मा गांधी के स्वच्छता के प्रति संकल्प के तहत यह आयोजन कर रहा है और 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उत्तर रेलवे के अनुसार स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत मंडलों, कारखानों एवं अन्य इकाइयों में कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों, रेलवे कॉलोनियों, स्वास्थ्य इकाइयों, पटरियों पर श्रमदान के माध्यम से गहन स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। वहीं रेलवे स्टेशनों के आसपास स्थित ग्राम पंचायतों में स्वच्छता चौपाल लगाई जाएगी, जिसके द्वारा ग्रामवासियों को ट्रेनों, रेलवे स्टेशनों और रेल परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक किया जाएगा। वहीं युवाओं में जागरूकता फैलाने के लिए भी कविता, निबंध, पेंटिंग और पोस्टर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने अपनी डिजिटल पहल ईज ऑफ बुकिंग के तहत मल्टीपल जर्नी क्यूआर टिकट की शुरुआत की है। ये दैनिक क्यूआर टिकट खरीदने की आवश्यकता को समाप्त कर यात्रियों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। ये कई यात्राओं के लिए एक सहज और निर्बाध यात्रा की सहूलियत प्रदान करता है। एमजेक्यूआरटी के लिए उपयोगकर्ताओं को दिल्ली सारथी मोमेंटम 2.0 ऐप पर पंजीकरण करना होगा और इसके बाद प्रक्रिया का पालन करते हुए यात्रा की जा सकती है। वहीं महाराष्ट्र का अगर रुख करें तो महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जन सुनवाई पोर्टल का अनावरण किया। पोर्टल को व्यापारियों के बीच सीधी और पारदर्शी बातचीत की सुविधा प्रदान करने और निर्यातकों को उनके मुद्दों को ऑनलाइन हल करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, मसाला बोर्ड, रबर बोर्ड, एपिडा और विदेश व्यापार महानिदेशालय जैसे कई विभाग शामिल हैं जो मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। श्री गोयल ने निर्यात ऋण गारंटी निगम की संशोधित स्माइल ईआरपी सुविधा का भी उद्घाटन किया। श्री गोयल ने व्यापार मंडल की एक बैठक की जिसकी अध्यक्षता भी की, जिसमें 10 राज्यों के मंत्रियों ने भाग लिया। बैठक में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्यों की विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुंबई में डब्बा वालों और मोची समुदाय के सदस्यों के लिए किफायती आवास बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण के माध्यम से कुल 12,000 घर बनाए जाएंगे और उन्हें मंजूरी दी जाएगी। कल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में मुंबई डब्बा वाला एसोसिएशन, कॉबलर एसोसिएशन और प्रियंका होम्स रियलिटी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। और अब रुख कर लेते हैं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव डॉ मनोज पंत ने कल राज्य सचिवालय नबन्ना में सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य के साथ बैठक की। बैठक में जिला अस्पतालों के बुनियादी ढांचे और अन्य स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने सभी विवरणों को दर्ज कराया और बताया कि सुरक्षा के मुद्दों का ध्यान रखा जाएगा और डॉक्टरों को विश्वास में लिया जाएगा। सभी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में आवश्यक निरीक्षण और निगरानी शुरू की जाएगी। ये बैठक राज्य में आरजीकर की घटना के मद्देनजर आयोजित की गई है। वहीं मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में 15 सितम्बर तक कोलकाता सहित दक्षिण बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हुगली और हावड़ा जिलों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने इस दौरान बांकुरा और पश्चिम मिदनापुर जिलों में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में भी कल तक छिटपुट से तेज वर्षा होने का अनुमान है। राज्य के तटीय इलाकों में मछुआरों को रविवार तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महानगरों की खबरों के बाद अब रुख कर लेते हैं मौसम का। सबसे पहले बात दिल्ली के मौसम की, तो आज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके अलावा अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
Chennai is expected to have partly cloudy sky and there is a possibility of moderate rain. The minimum temperature will be 29 degrees Celsius and maximum will be around 37 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature will be 20 degrees Celsius and maximum will be around 30 degrees. Hyderabad is expected to have, again, generally cloudy sky with light rain. The temperature will hover between a minimum of 22 degrees and a maximum of 31 degrees Celsius.
और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं. इतिहास की बात हो और सबसे पहले हिंदी दिवस की बात ना हो, शगुन ये कैसे हो सकता है. शुरुआत में आपने बताया था जैसा कि आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत की संविधान सभा ने देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था और इसे मंजूरी मिली थी. इसी के चलते प्रतिवर्ष इस दिन पर राष्ट्रीय हिन्दी दिवस मनाया जाता है. हिन्दी दिवस मनाने का उद्देश्य अपनी आधिकारिक भाषा का विश्वभर में प्रचार प्रसार करना है.
And now, listeners, let's take you way back in time. In the year 1820, Agri-Horticultural Garden of Calcutta started functioning.
1959 में सोवियत संघ का अंतरिक्ष यान पहली बार चंद्रमा की सतह पर उतरा.
In 1893, celebration of Sarvajanik Ganesh Utsav, which is festival of Lord Ganesha, was started.
1960 में आज ही के दिन खनिज तेल उत्पादक देशों ने मिलकर ओपेक की स्थापना की.
In 1953, Andhra Pradesh was established and Hyderabad became the capital instead of Karnool.
वहीं 1998 में Microsoft General Electric को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी.
In 1992, the government allowed foreign investors to enter the Indian capital market and incentives were offered.
और सन 2000 में आज ही के दिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिकी सीनेट के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया. तो ये तो थी इतिहास की बात और अब याद कर लेते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों को. सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक ज्ञान चंद्र घोष को. ये अनेक वैज्ञानिक संस्थाओं के संस्थापक और सदस्य रहे. घोष के अनुसंधान कार्यों से ही उनका यश विज्ञान जगत में फैला. ज्ञान चंद्र घोष द्वारा स्थापित तनुता का सिद्धांत घोष का तनुता सिद्धांत के नाम से सुप्रसिद्ध है, यद्यपि इसमें पीछे बहुत कुछ परिवर्तन भी दिखाई पड़ा.
Today, we are also remembering Tarashankar Bandyopadhyay, Indian novelist who wrote in Bengali language. He wrote novels, storybooks, plays, essay books, autobiographies, travel stories and composed several songs. He was awarded Rabindra Puraskar, Sahitya Academy Award, Padma Shri and Padma Bhushan. His works include novels such as Bipasha, Radha, Kalindi, Ganadevata, Panchagram, Kavi and Sanket, to name a few.
और आज आधुनिक राजस्थान के सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी कवि चंद्र सिंह बिरकाली का भी पुण्यतिथि है. इनकी सबसे प्रसिद्ध प्रकृति परक रचनाएं लू, डाफर और बादली हैं. चंद्र सिंह बिरकाली ने महाकवि कालिदास के कई नाटकों का राजस्थानी में अनुवाद किया. बादली और लू उनकी दो महान काव्य रचनाएं हैं जिन्होंने सारे देश का ध्यान राजस्थान की ओर आकर्षित किया था.
टुडे इट्स ऑल्सो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सिंगर एमी जेड वाइनहाउस. She was a British singer and songwriter known for her deep, expressive contralto vocals and her eclectic mix of musical genres, including soul, rhythm and blues, also jazz. She won Grammy Awards for Best New Artist, Record of the Year and Song of the Year, as well as Best Pop Vocal Album. And for listeners, for you, we have the song Back to Black to listen to. Get on without my.
और आज बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार ताराशंकर बंदोपाध्याय की भी पुण्यतिथि है. उन्हें उनके प्रसिद्ध उपन्यास गणदेवता के लिए 1966 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. ताराशंकर बंदोपाध्याय को साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. वे पश्चिम बंगाल से थे. ताराशंकर की कहानी जलसागर पर सत्यजीत रे ने फिल्म भी बनाई थी.
Also, we are remembering Harish Chandra Madhav Rao Birajdar. He was a wrestler and wrestling coach. He was a gold medalist in the 1970 Commonwealth Games. When he started off, he had this singular goal of becoming a wrestler and representing the state. Birajdar was honored with the Dhyan Chand Award in the year 2006.
और आज जानी मानी नृत्यांगना अलारमेल वल्ली का भी जन्मदिन है। इन्हें भरतनाट्यम में पांडन नल्लूर परंपरा के अग्रणी प्रस्तावक होने का गौरव प्राप्त है। लोगों ने उनके काम में गहराई, जुनून और सहजता लाने के लिए उनकी सराहना की। आज के सबसे रचनात्मक कलाकारों में से एक अलारमेल वल्ली पद्मश्री से सम्मानित होने वाली सबसे कम उम्र की शास्त्रीय नृत्यांगना है। उन्होंने भारत के लगभग सभी प्रमुख त्यौहारों में प्रदर्शन किया है और दुनिया की अधिकांश सांस्कृतिक राजधानियों में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की है।
Also, we are remembering James Cooper. It's his birth anniversary today. He was the first major American novelist. He wrote the series of novels of frontier adventure known as the Leather Stocking Tales, featuring the wilderness scout called Hawkeye. This is the leading character. And the series consists of the works such as The Pioneers, The Last of the Mohicans, The Prairie, The Pathfinder, and The Deer Slayer.
और शगुन अब हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के जाने माने संगीतकार रामकृष्ण शिंदे को। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसे बहुत से गुणी संगीतकारों के नाम मौजूद हैं जिन्होंने मौका मिलते ही बेहद मधुर धुनें रची, लेकिन तमाम काबिलियत और संगीत का भरपूर ज्ञान होने के बावजूद सिनेमा जगत में उन्हें ये जगह नहीं मिल सकी जो वो हकदार थे। इसकी एकमात्र वजह थी कि उनमें इस चकाचौंध भरी दुनिया में खुद को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी खुद को बेच पाने का गुण नहीं था। ऐसे ही संगीतकारों में रामकृष्ण शिंदे भी शामिल थे जिन्होंने 1947 में बनी फिल्म मैनेजर से अपना करियर शुरू किया। शुरुआत में रामकृष्ण शिंदे ने मराठी नाटकों में संगीत देना शुरू किया। उनकी बनाई बंदिशें बेहद मशहूर होने लगी और बहुत जल्द वे मराठी नाटकों के दर्शकों के बीच एक जाना पहचाना नाम बन गए। अपनी बनाई कर्णप्रिय धुनों की वजह से ही उन्हें फिल्म मैनेजर मिली थी।
Also, we are remembering Janet Gaynor, American film, stage and television actress as well as an accomplished oil painter. In the year 1929, she became the first recipient of the Academy Award for Best Actress for her performances in three films, namely Seventh Heaven, Sunrise, A Song of Two Humans, and Street Angel.
और अब हम याद कर रहे हैं एक भारतीय फिल्म निर्देशक राजकुमार कोहली को। उन्होंने 1970-1980 के दशक में नागिन, जानी दुश्मन और राजतिलक जैसी कई फिल्मों का निर्देशन किया। उनकी फिल्मों में अक्सर सुनील दत्त, धर्मेंद्र, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और अभिनेत्री रीना रॉय, अनीता राज जैसे अभिनेता शामिल होते थे। 1990 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अपने बेटे अरमान कोहली को मल्टी स्टारर एक्शन फिल्म विरोधी में पेश किया और इसके अलावा उन्होंने औलाद के दुश्मन और कहर जैसी फिल्मों का भी निर्देशन किया।
And listeners, today it's Sam Neill, the actor's birthday today. Neill's career has included leading roles in both dramas and blockbusters. He first achieved recognition with his appearance in the film Sleeping Dogs, which he followed with leading roles in My Brilliant Career, Omen 3, The Final Conflict, Possession, Evil Angels, Dead Calm, The Hunt for Red October. He came to international prominence as Dr. Alan Grant in Jurassic Park, which was a role that he reprises in Jurassic Park 3 and Jurassic World Dominion. Neill has appeared in numerous television series in guest and recurring roles, including Ace of Spices, The Simpsons, The Tudors, Crusoe, Happy Town, and many more. Also, today it's Ayushman Khurana's birthday. Indian actor and singer, he is the recipient of several awards, including the National Film Award and also Filmfare Awards. And he has worked in films such as Andhadhun, Dream Girl, Badhai Ho, and also Bala. And for listeners, we have this beautiful song to listen to.
Pani da rang vekh ke, Pani da rang vekh ke, Pani da rang vekh ke, Akhiya jo anjood de. अखियां जो अंजूर उड़ दे, माहियां ना आया।
और चलते चलते सोम ठाकुर की एक कविता याद कर लेते हैं। करते हैं तन मन से वंदन जन गण मन की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का।
Also, listeners, stay tuned for coming up next is our Samachar Prabhat, which is our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thank you so much, listeners, for tuning in. We hope you have a beautiful day, a superb day.
Namaskar. Namaskar.